ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुशियों भरी संध्या काल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम सभी दो दिनों से इस शांतिवन परिसर का आनंद ले रही है और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में अपना बहुत बड़ा योगदान जमा कर चुके हैं। यस और नो? यस और नो? यस, वेरी गुड। आज के संध्या में हम सभी बहुत सुंदर विषय को लेकर के अपने जीवन में स्वयं को देखेंगे कि हम कितने महान हैं, हमारा यह जीवन कितना वैल्यूएबल है। क्योंकि कहते हैं मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। कि भगवान ने मुझे बना के दिया, किसने बना कर दिया? हम स्वयं अपना संसार बनाती है। जब से संसार में हम आए हैं, हमारी यही तमन्ना रही है कि कुछ करे जो हमें मिले, ऐसा कुछ कर्म करे जो मिले। कुछ मिलता गया, कुछ पाते गए, समय बीतता गया, और आगे बढ़े, फिर और कर्म किया, जिसकी इच्छा बनी रही और भी कुछ मिले, वह भी मिल गया, इसके आगे और बढ़े तो और हमारी तृष्णा बढ़ी, और आगे क्या हुआ? ऐसा कुछ करे जो सब कुछ मिल जाए, राइट? और इसी भाग दौड़ में मनुष्यों ने अपने आप को तनावग्रस्त बना दिया, क्योंकि तृष्णाएं बढ़ती गई है और हमारा जो वास्तविक मूल्य है जीवन का, संतुष्टता, प्रसन्नता, ये हमारा श्रृंगार तनाव ने ले लिया है। इसलिए आज ब्रह्मा कुमारी के इस परिसर में आकर के परमात्मा शिव को अपना सारा तनाव गिफ्ट करके जाएं। तैयार है सभी? तनाव को गिफ्ट करने के लिए तैयार है? यस, अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो आज के सुंदर विषय को लेकर के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मंच पर आज के महानुभावों का आह्वान कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन, ब्रह्मा कुमार बहरचंद भाई, श्री सुधीर कुमार जी, ब्रह्मा कुमारी तारा बहन, ब्रह्मा कुमारी विजय बहन, आप सभी इस मंच पर पधारेंगे और हम सभी मिलकर के आज संसार में से बहुत बड़े बोझ को हल्का करेंगे। क्योंकि हर मानव संसार का बोझ तनाव के रूप में उठाकर चल रहा है और ये तनाव ने हमारी खुशियां लूट ली हैं। हम सब करतल ध्वनि से हमारे मेहमानों का अभिवादन करेंगे। आदरणीय विजय बहन जी, आप मंच पर पधारेंगे, आपका हार्दिक स्वागत। हम सब अपने आप को संकल्पबद्ध करेंगे कि मैं अपने साथ अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हुए जीवन में दिव्य गुणों को धारण कर संसार को, समाज को, देश को, विश्व को मूल्यनिष्ठ समाज बनाकर रहेंगी। तो चलते हैं, दो मिनट सबसे पहले हम प्रभु पिता की याद में बैठेंगे और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भगवान की हम सब अमूल्य दौलत हैं। कहते हैं कि अच्छाइयों का एक एक तिनका चुन चुन कर जीवन भवन का निर्माण होता है। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुन चुन कर जीवन भवन का निर्माण होता, पर बुराई का एक हल्का झोंका उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। पर्सनालिटी कपड़ों की होगी तो लोग लाइक करेंगे, अगर पर्सनालिटी विचारों की होगी तो लोग फॉलो करेंगे। मुझे क्या करना है, कौन सी पर्सनालिटी बनाएंगे, विचारों की पर्सनालिटी है? विचारों की पर्सनालिटी, विचार मेरे जितने ऊंच होंगे, विचारों के अंदर सद्भावना, सद्कामना, सहानुभूति, दिव्यता, सत्यता, ईमानदारी, डिविनिटी, शांति, प्रेम, अगर ये है तो मेरा जीवन भवन दूर से लोगों को आकर्षित करेगा। और वहां पर कौन सा वास होगा, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आज हम वो सब लेंगे, आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध कहे कि आप आकर के हमारे मंच आसीन विशेष अतिथियों का स्वागत सम्मान करेंगे। ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी जी, सुधीर भाई जी, बहर भाई जी, शैलजा बहन जी, तारा बहन जी, तालियों में आज तक गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है। तालियां बजाते रहिए और अपना स्वास्थ्य सुंदर बनाते रहिए। स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में है, तालियां बजाइए, तनाव को दूर भगाइए। हमें याद रहे, जीवन की सबसे महंगी चीज, जीवन की सबसे महंगी चीज वर्तमान है। अगर एक बार चला जाएगा तो सारी दुनिया की संपत्ति दे करके भी उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम सब इस समाज के आदर्श हैं, एग्जाम्पल है। वर्तमान घड़ियों को आनंद लीजिए, इसको संसार में खूब बांटिएगा। जो हम देंगे वो मुझे वापस मिलना है, इसलिए जो चाहिए तो बांटते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुश होकर के जियो, खुशियां बांटो। आज का ये मंच, हर चेहरे पर मुस्कान, देखते हैं हम इस संसार को फिर से तुलसी की तरह खुशबूदार, उसमें छिपे स्वास्थ्य के गुणों से निखार लाने वाला स्वस्थ संसार की स्थापना करने जा रही है। आध्यात्मिकता एक ऐसी कड़ी है जो जीवन में सद्गुणों को संजो देती है, और उसमें वह ताकत है जो हमारे भीतर में छिपे हुए अवगुणों के दाग सदा सदा काल के लिए निकल जाती है। तो हम सभी ऐसा मूल्यनिष्ठ समाज, तनाव मुक्त जीवन, भय मुक्त जीवन बनाने के लिए तैयार है। आज के इस विषय में सबसे पहले मैं निमंत्रण देती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी, आप 1974 से इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लेकर संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके हैं। आप भोपाल जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल विंग के। आपके नेतृत्व में 12 सेंटर और 75 गीता पाठशालाएं सेवारत है, और आप ज्ञान योग सद्गुणों के द्वारा इस फुलवारी की पालना कर रहे हैं आदरणीय शैलजा बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, सम्माननीय मंच और सभा में बैठे हुए हमारे अति आदरणीय स्नेही समाज सेवी भाइयों और बहनों, आज बहुत सुंदर विषय को लेकर हम आए हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग। इस विषय को सुनते ही एक प्रकार से मन के अंदर एक सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि आज चारों तरफ इसी एक शब्द की गूंज है। क्या बच्चे, क्या युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी के मुख पर ये शब्द एकदम नेचुरल हो गया है। कई तो सोचते हैं क्या स्ट्रेस फ्री होकर के भी जीवन जिया जा सकता है। वास्तव में ये संभव है, और इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हुई है। हम सभी याद करें, आज से 30-40 वर्ष पहले हमने इस शब्द को अपने स्कूल लाइफ में फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में सुना था। हमें इसकी डेफिनेशन देते हुए एक सूत्र बताया गया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। जो हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है, परिवार का, समाज का, राजनीति का, व्यक्ति के स्वभाव संस्कारों का, इन सभी प्रेशर को कोप अप करने की या इसका सामना करने की रेजिलियंस पावर, क्षमता, कैपेसिटी हमारे अंदर अगर कम है तो निश्चित है कि हम स्ट्रेस का अनुभव करेंगे। अगर हमारे अंदर ये आंतरिक क्षमता है तो हम उसे कोप अप कर लेंगे। हम देखते हैं समान सिचुएशन में एक व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसी सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति सहज अपने विवेक को यूज करते हुए, अपने वैल्यूज को यूज करते हुए और सफलतापूर्वक बाहर निकल आता है। तो सिचुएशंस का आना, परिस्थितियों का आना ये स्वाभाविक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। परंतु उन्हीं सिचुएशन में, उन्हीं परिस्थितियों में से मुस्कुराते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकल आना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। और इसी आर्ट ऑफ लाइफ को, इसी जीवन जीने की कला को सीखने के लिए हम इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई का आधार लेते हैं। और हम सभी से यही आवाहन भी करते हैं कि अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हम अध्यात्म को अपनी दिनचर्या का, अपनी जीवन शैली का एक अंग बना ले। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हमने ये समझा कि स्ट्रेस का कारण बाहर नहीं है, बाह्य परिस्थितियां नहीं है, बाहरी व्यक्ति नहीं है, बाहरी संबंध नहीं है, वरन उसका कारण है हमारे अंदर उस स्ट्रेस को कोप अप करने की क्षमता की कमी है और उस क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार एक महात्मा जी थे, जब भी उनके सामने कोई समस्या आती, कोई परिस्थिति आती तो वो अपने झोले में से एक आईना निकालकर, शीशा निकालकर और उसे बहुत गौर से देखा करते थे और रख देते थे। थोड़ी देर बाद फिर उस आईने को निकालते, बहुत अटेंशन से उसको देखते और रख देते। जब भी कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई समस्या आती तो उनका ये नियम था। एक बार उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, ये आप आईना निकाल करके क्या देखते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जिसके कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई है, जिसके कारण ये स्ट्रेस की स्थिति आई है। तो कहा, महात्मा जी आईने में तो आपको अपना स्वयं का ही अक्स दिखाई देता होगा, प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। बोले, हाँ मुझे समझ में आता है कि इस परिस्थिति के रूट में, इसके मूल में मैं हूँ, मेरी सोच है, मेरा स्वभाव है, मेरा ही अपना कोई नेचर है। फिर दूसरी बार आप क्या देखते हैं? कहा दूसरी बार मैं ये देखना चाहता हूं कि इस परिस्थिति का समाधान किसके पास है। तो कहा तब भी तो आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखता होगा। बोले निश्चित ही, और मुझे समझ में आता है कि इसका समाधान भी मेरे पास है। जब कारण मैं हूं तो समाधान भी मेरे पास है। तो ये जो चेंज की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, ये किसे है? ये मुझे है। जब भी हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है तो ये स्ट्रेस एक मैसेज हमको देता है कि कहीं ना कहीं हमें चेंज की जरूरत है। हमारी जैसी सोच लेकर हम चलते रहे हैं, जिस तरीके के बिलीफ सिस्टम को हम लेकर के चलते रहे हैं, जिस तरीके से कार्य हम करते रहे हैं, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या परिवर्तन करना है? हमें चेक करना है कि मेरा एटीट्यूड, जो मेरा दृष्टिकोण है, वो पॉजिटिव है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस वर्ष को सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, इस रूप में मना रही है। तो क्या अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना है? कहाँ कहाँ लाना है? सबसे पहले मुझे अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव लाना है, क्योंकि जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा एटीट्यूड है, वही मेरे विचारों को, मेरी सोच को जन्म देता है। वो पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे संकल्प भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जब मेरे संकल्प सकारात्मक हो जाएंगे तो संकल्प या विचार कर्म का बीज होता है। जब विचार या संकल्प मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे तो मेरा कर्म, मेरा व्यवहार किस तरीके का होगा? सकारात्मक होगा। और जितना मैं पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाती जाऊंगी, हर परिस्थिति को, उसके डार्क साइड को ना देख करके मैं उसके उजले पक्ष को देखूंगी, मैं उसके सकारात्मक पक्ष को देखूंगी, और उस आधार पर मेरा व्यवहार होगा। तो ये स्ट्रेस एक प्रकार से मुझे चेंज के लिए मैसेज देता है कि ये परिवर्तन मुझे अपने अंदर लाना है। क्योंकि जब भी चेंज की बात आती है तो उस चेंज को हम, चाहे वो चेंज हमारा परिवार के अंदर हो, चाहे व्यक्तियों के साथ स्वभाव संस्कार को लेकर के हो, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज के में चेंज हो, या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ चेंज हो, जब भी कोई चेंज होता है उस चेंज के साथ हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उस चेंज को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तभी हमारे अंदर स्ट्रेस होता है। अगर हम अपने में चेंज लेकर के आए तो निश्चित है बाह्य परिस्थितियों के चेंज को भी हम स्वीकार कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं जब हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी फिजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बाह्य वातावरण में जो कुछ भी परिवर्तन होता है मौसम आदि में, तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी, हमारी शारीरिक रेजिस्टेंस पावर कम होती है तो सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरस, ये सब हम पर इफेक्ट डालते हैं। इसी तरीके से जब हमारी आत्मा शक्ति संपन्न होगी, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो स्ट्रांग होगी, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, तो निश्चित है कि बाह्य परिस्थितियों को, बाह्य परिवर्तनों को हम सहज स्वीकार कर सकेंगे। स्ट्रेस का एक कारण ये भी होता है कि हमारी औरों से एक्सेप्टेशन ज्यादा होती है। अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो परिवार में हो, ऑफिस में हो, जॉब कहीं भी हो। जब वो हमारी अपेक्षाएं फुलफिल नहीं होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं, तो हमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस का एक कारण हमारा स्वभाव होता है, हम उसको शॉर्ट में कहते हैं तीन शब्द, हरी वरी एंड करी। उतावलापन, जल्दबाजी। हरी वरी माने चिंता, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करने का हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। और तीसरा करी माना, जो आजकल भी डॉक्टर्स भी मना करते हैं, ज्यादा ऑयली, ज्यादा गरिष्ठ, ऐसा भोजन जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। इसी प्रकार से मन के लिए भी ये सब बातों का हम अटेंशन रखें तो स्ट्रेस से हम सहज ही फ्री हो सकते हैं। हमें आप सभी को जो यहाँ पहले ही दिन राजयोग शिविर के अंदर लेसन दिया गया, स्वयं का परिचय, और आप रोज किसी न किसी तरीके से इस पाठ को दोहरा रहे हैं, मंच से दोहराया जा रहा है, रोजाना आपको मेडिटेशन का अनुभव कराया जा रहा है, और उस अनुभूति में यही बताया जा रहा है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए कैसी भी परिस्थिति में वो स्ट्रेस फ्री रह सके, खुशनुमा जीवन जी सके, घर परिवार के वातावरण को अच्छा बनाकर रख सके, उसके लिए उसका जो मूल स्वभाव है, उसके जो मूल गुण हैं, शक्तियां हैं, गुण हैं, आप सभी ने शिविर के माध्यम से जाने हैं, उन सभी वैल्यूज को, उन सभी गुणों को, उन सभी शक्तियों को मुझे फिर से जागृत करना है। हम मेडिटेशन में उसको बार बार अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी विस्मृति में चली गई बातें हैं उनको हम बार बार स्मृति में लाते हैं, और ये हमारी अपनी निजी चीज है। पहले हमें लगता था ये शांति, ये प्रेम, ये सद्भावना, ये हर एक के साथ सहयोग की भावना से, ये बहुत सामान्य जीवन में ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हमें परमात्मा पिता के ज्ञान से ये समझ में आया, ये तो मेरी अपनी इनेट वैल्यूज है, ये तो मेरे अपने निजी गुण हैं, मेरी अपनी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों को, ये मेरे अंदर है, केवल अवेयरनेस की जरूरत है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में नियमित दिनचर्या का अंग है ये मेडिटेशन, इसलिए ये हम बार बार इसको अनुभव में लाते हैं। हमारा एक और प्रैक्टिस करने का तरीका है, जो हमें टाइटल्स मिलते हैं, हमें स्वमान मिलते हैं, हम उस ऊंचे से ऊंचे परम प्रिय परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो जो उनकी महिमा है वही मेरा स्वरूप है। वे भाग्य विधाता है तो मैं भी मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं अनेक आत्माओं के भाग्य को अपने साथ उज्जवल बना सकती हूँ। वे सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये जो मेरा स्वमान है, इस स्वमान को अनुभव में लाने के लिए हम नियमित प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम इस बात का और अटेंशन देते हैं, स्ट्रेस का कारण एक ये भी हो जाता है कि सारे दिन की दिनचर्या में हम इनपुट के रूप में अपने अंदर क्या डालते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कैसा सुनते हैं। तो जैसा इनपुट हमारे अंदर जाएगा, प्रोसेसिंग तो उसी की होगी ना, चिंतन तो उसी का चलेगा, और आउटपुट के रूप में, चाहे बोल के रूप में, कर्म के रूप में, व्यवहार के रूप में, स्वभाव के रूप में, वही बाहर फिर शो होता है। इसलिए अगर हम सुबह सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या मेडिटेशन से प्रारंभ करते हैं, पॉजिटिव थॉट से प्रारंभ करते हैं। मेडिकल साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि सुबह हम जब उठते हैं, उठते ही हमारे जो 15-20 मिनट का समय होता है, उस समय हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। हम जो भी चीज अपने दिमाग में डालते, अपने चिंतन में लाते, वो अंदर चली जाती है और उसकी फिर प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही कुछ और विचार ना कर, गुड मॉर्निंग भी हम करें तो ईश्वर के साथ, हम चिंतन उनका करें, ध्यान उनका करें, महिमा उनकी करें, अपने स्वमान जो उन्होंने हमें अपनी पहचान दी है उसका स्मरण करें, तो निश्चित है कि जब हमारी शुरुआत इतनी अच्छी होगी तो सारा दिन का जो हमारा कार्य व्यवहार है वो भी ऑटोमेटिक अच्छा होगा और सहज ही हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफ होती चली जाएगी। तो इन सब बातों को हम जितना प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, उतना हमारी फैमिली लाइफ, हमारी वर्क लाइफ, हमारी सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट बेहतर होते चले जाएंगे और हमारा ये जीवन जो है स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हम सभी जानते हैं जितना व्यक्ति स्ट्रेस फ्री होगा उतना ही उसके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी। और हम जो समाज सेवा के निमित्त हैं, हम समाज को एक सुंदर नई दिशा देने के संबंध में कुछ सोच सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
धन्यवाद आदरणीय शैलजा बहन जी। आपने सुंदर बताया कि इंसान अपने विचार और सोचने का स्तर अगर ठीक कर ले तो यह जीवन मधुबन बन जाएगा। यस, हमारा सोचने का तरीका, देखने का नजरिया और कर्म करने का तरीका ही पॉजिटिव है तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सहज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करना चाहेंगे ब्रह्मा कुमार मेहरचंद भाई जी। आप उत्तराखंड से हैं। 1964 में आप इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और केवल 21 वर्ष की आयु में 1970 में आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। ब्रह्मा कुमारी की स्पोर्ट्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ आप उत्तराखंड के डायरेक्टर भी हैं, आदरणीय मेहरचंद भाई जी।
ओम शांति। क्या बात, दोपहर का खाना नहीं खाया। ओम शांति, ओम शांति। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जीवन में सुंदर घड़ियां कभी कभी आती हैं जब सौभाग्य उन पर हस्ताक्षर करता है। मुझे भी प्रथम बार समाज सेवा पर भाग में बोलने का सुअवसर मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है और चाहूंगा कि आगे भी मिलता रहेगा क्योंकि प्यार में ताकत है झुकाने की, वरना क्या जरूरत पड़ी थी राम को झूठे बेर खाने की। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप समाज सेवा पर भाग के इस कार्यक्रम में आए, आप सभी समाज सेवी हैं, आपके लिए दो लाइनें दे रहा हूं। आपकी खिदमत में ठान लिया जिन्होंने कुछ करने के लिए, ठान लिया जिन्होंने कुछ करने के लिए दामन में सबके खुशियां भरने के लिए, मैं ऐसे समाज सेवकों को वंदन करने आया हूँ, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूँ। मनुष्य 84 लाख योनियों का सिरताज है, परंतु यदि मनुष्य में संवेदना, करुणा, दयालुता नहीं है तो क्या मनुष्य का जीवन या पशु का जीवन इक्वल है? यही गुण मनुष्य को पशुओं से अलग करते हैं। एक परमार्थी को कष्ट सहकर भी दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। महाराजा रणजीत सिंह ने डिप्पू खोले अनाज के और वो गुप्त रूप में घुमा करते थे, देखते थे कर्मचारी वर्ग कार्य करता है नहीं। उसने देखा कि 5 बज रहे हैं, एक बूढ़ा अनाज मांग रहा है, परंतु कर्मचारी वर्ग कह रहा है कि 5 बज चुके हैं, कल आना, परंतु वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने उनको कहा कि इसको अनाज दे दो। उनके कहने पर अनाज उसको दे दिया गया, उसने बोरी भरवा ली। अब वो तो बंद करके चले गए, बुजुर्ग से बोरी उठती नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह दूर खड़े देख रहे थे, खुद आए। उसने कहा, बुजुर्ग वार, ये बोरी आप मेरे को उठवा दो, आप आगे आगे चलो अपने घर, पीछे पीछे मैं चलूंगा, मुझे आपके घर का मालूम नहीं। महाराजा रणजीत सिंह उनके पीछे पीछे चले गए। जब घर गए, बोरी नीचे रखी, तो पुत्र वधू ने पहचान लिया कि ये बोरी डालने वाला तो देश का राजा है, महाराजा रणजीत सिंह है, और ये पिताजी ने क्या किया। उनको बुला के पूछा, आप ये क्या कर दिया। कहता, क्या बात? कहते, तो महाराजा रणजीत सिंह हैं जो आपकी बोरी उठा के लाए। बूढ़ा पैरों पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं देश का राजा हूं, मेरा दायित्व है अपनी प्रजा को सुख देना। तो बुजुर्ग ने बोला कि आप प्रजा पर राज्य नहीं करते, आप लोगों के मनों पर राज करते हैं। तो देखिए, ये है परोपकारी, इसको कहते हैं परोपकारता। अपना कोई अभिमान नहीं है। परोपकार 2 प्रकार के हैं। एक परोपकार बाहरी है, आपने अन्न दान किया, धन दान किया, दवाइयां दान की, गौ दान किया, ये बाहरी है, ये मनुष्य को करते रहना चाहिए। परंतु दूसरा जो दान है वो है सद्गुणों का, विवेक का, दूसरों की आत्माओं में विवेक जागृत कर देना। आज इसकी आवश्यकता ज्यादा है। धन का दान करने से वो मनुष्य जरूरी नहीं कि वो चरित्रवान बन जाए, परंतु ज्ञान का दान करने से उसका चरित्र उठ सकता है। हमारे अतीत में जितने भी गुरु लोग हुए, ऋषि मुनि हुए, साधु संत हुए, वो यही कार्य करते थे, समाज को गढ़ते थे। सिकंदर भारत आया, उसने देखा कि भारत में जब तक ये गुरु और ब्राह्मण हैं, तब तक ये भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि समाज को गढ़ते हैं। उन द्वारा दिया गया साहित्य, उस समय भी वो उससे सम्मानित थे और आज तक भी उनको सम्मान मिल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय यही दिव्य कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा पुण्य दूसरों की आत्माओं में प्रकाश उत्पन्न करना है। देखिए महात्मा बुद्ध ने उंगली माल में प्रकाश उत्पन्न किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद में प्रकाश उत्पन्न किया, स्वामी विद्यानंद ने स्वामी दयानंद में प्रकाश उत्पन्न किया। जिन्होंने ये कार्य किए वो आज तक भी मान्य हैं। यदि हम ये कार्य करने में सफल होते हैं इस समाज में न तो अशांति रहेगी न अज्ञानता रहेगी, ये समाज ऊपर उठ जाएगा। हम सब जानते हैं इतिहास में अंबापाली, उंगली माल, वाल्मीकि, सूरदास, संत तुलसीदास आरंभ में पतित थे। उन्होंने उनको जिन्होंने उनका रास्ता मोड़ा वो कितने पुण्य के अधिकारी हैं। ऐसे मोड़ जो समाज को देते हैं वो समाज को बदलते हैं। एक बार गांधी जी के आश्रम में रात को चोर एंटर कर गया, चौकीदारों ने चोर को पकड़ लिया और सवेरे गांधी जी के पास पेश किया। बापूजी ने पूछा ये चोर नहा चुका है, इस चोर को नाश्ता करा दिया गया है। उन्होंने कहा जी ये तो चोर है। बापूजी ने कहा चोर है तो क्या ये आदमी नहीं है, इसको पहले नहलाओ और फिर नाश्ता कराओ और फिर मेरे पास पेश करना। ऐसा ही किया गया। जब चोर नहा धोकर नाश्ता करके बापूजी के पास आए तो कहने लगा बापूजी आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और आज से मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। देखिए कितना बड़ा मोड़ चोर को दिया है। यह था हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्तियों को सद प्रवृत्तियों में बदलता है वो ही इतिहास बनाता है। हमारे जितने रिफॉर्मर्स हुए हैं उन सब ने लोगों को सद प्रवृत्तियों की तरफ मोड़ा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की सफेद वस्त्र धारणी भाई बहने यही दिव्य कार्य कर रहे हैं, इस समाज के अंदर प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर यह प्रकाश उत्पन्न किया। उसके बाद हमारी दादियों के अंदर यह प्रकाश उत्पन्न हुआ और फिर ये लाखों भाई बहने आपके बीच में घूम रहे हैं, इनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ है और इनके जीवन में बदलाव आए हैं। इसलिए ऐसा ज्ञान जो जीवन में बदलाव उत्पन्न करे वो ही समाज को टेंस मुक्त कर सकता है। वरना तो हम बाहरी बातें जितनी मर्जी करते हैं उनसे टेंस नहीं जाएगा और न जा रहा है। यदि हम टेंसलेस होना चाहते हैं, हमें अपनी आत्मा में ज्ञान का आलोक देना पड़ेगा, आत्मा को ज्ञान से प्रफुल्लित करना पड़ेगा। जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं है, हमने आत्मिक संपदा नहीं बटोरी, ये धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आज धनाढ्य लोग नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, टेंस फुल हैं। धन से शांति नहीं आ सकती, शांति आएगी तो ज्ञान से आएगी, योग से आएगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में यही ज्ञान योग सिखाया जा रहा है। सत्कर्मों की कोई प्रेरणा दे यह बहुत बड़ा पुण्य है। एक बार एक शराब के ठेके पर एक आदमी खड़ा, कहने लगा ठेकेदार को सिनाई पागल है। सिनाई एक उम्दा शायर था राजा महमूद सुल्तान का, उसको कहने लगा ये पागल है सिनाई। ठेकेदार ने कहा तू ऐसा कैसे बोल रहा है, वो देश के राजा का उम्दा शायर है, तुझे अरेस्ट करा देगा। उसने कहा कुछ भी हो सिनाई पागल है। अचानक सिनाई वहां से गुजर रहा था, उसने सुना कि मुझे पागल कह रहा है कोई, वो उसके पास आया, कहने लगा कि सिनाई कैसे पागल है। कहने लगा पागल नहीं तो क्या है, भगवान ने उसको इतनी अचूक बुद्धि दी है, वो उसका इस्तेमाल एक राजा को खुश करने में लगा रहे हैं, काश कि वो परमात्मा को खुश कर देता, अपनी सारी बुद्धि उसमें खपा रखी है। सिनाई को वैराग आया, सिनाई वापस हो लिया और जंगल की राह ले ली थी। देखिए कितना बड़ा मोड़ जीवन में दिया उसने। ऐसे मोड़ जो देते हैं वो अक्षय पुण्य के अधिकारी होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय की ये बहनें आज लाखों लोगों को मोड़ दे रही हैं, जिनके जीवन में व्यसन थे, जिनके जीवन में बुराइयां थी, उनको आज ज्ञान देकर उनकी सारी बुराइयों को इन्होंने परमात्मा पर चढ़वा दिया है। यह एक बहुत बड़ा पुण्य है। आज परमात्मा पिता भी ऐसे आत्माओं को ढूंढ रहा है जो उदार हृदय प्राणी हैं, वो यदि ये समझते हैं कि हमने समाज बदलना है तो उनको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान और योग की शक्ति से आत्माओं में परिवर्तन असंभव है। गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन को डिसहार्टन है, भगवान उसको ज्ञान और योग की शिक्षा देकर उसका मनोबल बढ़ा रहा है। बिना ज्ञान और योग के जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। आज समाज को उन मीराओं की आवश्यकता है जो पैरों में घुंघरू बांधकर एक तारा लेकर गली गली में जाएं। उन सूर कबीर की जरूरत है जो गली गली में ज्ञान का गुणगान करें। ऐसी आत्माओं के लिए भगवान आंखें फाड़ कर देख रहा है। रामायण में हम पढ़ा करते थे राम ने हनुमान को ढूंढा था, आज भगवान भी हम बच्चों को ढूंढ रहा है। क्योंकि ये दुनिया लंका बन चुकी है, वैभवों के अंबार हैं, मनुष्य के पास धन वैभव बढ़ गया है परंतु चरित्र रावण की तरह घट गया है। इसीलिए उसको पुण्य अयोध्यापुरी बनाने के लिए, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा राम आज हनुमानों को ढूंढ रहा है। जो उदार व्यक्ति है वो इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जो तत्पर होते जा रहे हैं, वही एक नए समाज का स्वर्ग का निर्माण करेंगे। मैं अंत में आपके लिए दो लाइनें दे रहा हूं समाज सेवकों के लिए। आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपकी यादों को दिल में बसाए बैठे थे। इस शुभ घड़ी का इंतजार था हमें, इस शुभ घड़ी का था इंतजार हमें, हम इसी दिन के लिए नगमे सजाए बैठे थे, हम इसी दिन के लिए नगमे सजाए बैठे थे। ओम शांति।
धन्यवाद आदरणीय मेहर भाई जी, आपने हम सभी को यही शुभ आश दिलाई है कि हमें हर आत्मा की ज्योति को जगाना आवश्यक है। जब आंतरिक ज्योति जग जाती है तो तनाव सहज दूर भग जाता है, जिसे कहना चाहेंगे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अब हम सबके बीच में नन्ही सी बालिका रोशनी अमरावती से आ रही है, अपने नृत्य के द्वारा हम सभी का तनाव दूर करने के लिए, खुशियां बांटने के लिए। कुमारी रोशनी,
गणपति सूर निरागस हो, सूर निरागस हो नयन करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक, शुभ नयन करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। ओंकार गणपति, ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति, लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो। पतिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो
बहुत खूब कुमारी रोशनी, आपने तो मूल्यों का एक आधार स्तंभ अपने जीवन से अपने हर अंग से मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले विघ्न विनाशक गणपति जी को ही लेकर के आ गए हैं। अब मैं आह्वान करना चाहूंगी श्री सुधीर कुमार जी, आप कुरुक्षेत्र विभाग माननीय संघ चालक हैं, आप सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के आरएसएस के प्रेसिडेंट हैं आदरणीय माननीय श्री सुधीर भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति ही, ओम शांति ही। सम्माननीय मंच, अपने इस सभागार में उपस्थित सज्जन वृंद, बंधु एवं भगिनी, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा यहाँ के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का सुअवसर दिया। मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रेम दीदी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। बंधु एवं भगिनी, हमारा देश एक प्राचीन देश है और प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज हमें बताते थे कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत दुर्लभ जीवन है, ये सरल नहीं है, ये हमें अनायास नहीं मिला, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये जीवन मिला। और उन्होंने इसके साथ साथ एक बात और जोड़ी कि ये जो अपना जीवन है 84 लाख युनियों के बाद हमें मिला, और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, अर्थात विभिन्न प्रकार की योनियों को भोग कर हम 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। परंतु अपने समाज में बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि ये तो काल कल्पित है, ऐसा हो सकता है क्या? 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिलना ये संभव है क्या? परंतु आज के युग में तो हम कहां जी रहे हैं, हम तो विज्ञान के युग में जी रहे हैं, आधुनिकता के युग में जी रहे हैं। हम जानते हैं, हमने जीव विज्ञान पढ़ा होगा, जीव विज्ञान में जीव जगत पढ़ा होगा, और जीव जगत में बताया गया कि जीव दो प्रकार के हैं, एक वर्टिब्रेट्स और दूसरे नॉन वर्टिब्रेट्स। तो नॉन वर्टिब्रेट्स में जो एरीड़धारी हैं, इस संसार में सबसे पहला प्राणी जिसमें चेतना प्रादुर्भाव हुई वो एक कोशीय जीव जिसका नाम हम जानते हैं अमीबा है। वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और विकसित होते होते हम कहां तक पहुंचे, मनुष्य तक पहुंचे। हमारा विज्ञान जगत मानता है कि 1 करोड़ स्पीसीज अमीबा और मनुष्य के बीच में है, और दुर्लभ तो है ही है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है ना, अनायास तो नहीं मिला ना, सरलता से तो नहीं मिला ना। साथ ही मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ भी है। इस सारे प्राणी जगत में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। एक कथा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार जंगल में पशु पक्षियों की सभा हो गई और पशु पक्षी क्या कहने लगे, ये जो मनुष्य है इसने अपना इतिहास स्वयं लिखा है और कहता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ये कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है भाई? ऐसी चर्चा सब पशु पक्षियों में प्रारंभ हो गई, और चर्चा के प्रारंभ में गाय ने सबसे पहले कहा कि देखो, मेरा जब बछड़ा या बछड़ी होती है तो पैदा होती क्या होता है, वो चलना प्रारंभ करती है, उछल कूद करती है। और दूसरी ओर मनुष्य का जो बालक है, जब वो पैदा होता है, बहुत ही बुरी बात जैसे कहेंगे आप कह सकते हैं क्या, कि वो बालक तो एक लद्दू राम की तरह पड़ा रहता है, और जब उसको भूख लगती है ना तब तो वो रोता है, हंसना भी नहीं आता उसको। चलना भी कब सीखता है, जब सांप की तरह रेंगता है, गुडलियों चलता है, और थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है तो कैसा होता है, गडीलने के सहारे से चलता है, वॉकर के सहारे से चलना प्रारंभ करता है, 1 वर्ष के बाद तो वो चलना प्रारंभ करता है। ऐसा बालक कहां सर्वश्रेष्ठ हो सकता है भाई, जो 1 वर्ष के बाद चलना सीखे। उसके बाद बारी आई कोयल की। कोयल ने कहा कि मेरा जो स्वर है, मेरी जो कूक है, जिस दिन मैं अपने बच्चे को जन्म देती हूं उसके साथ उसकी मीठी वाणी भी देती हूं, उसकी कूक भी मेरे जैसी होती है। और ये जो बालक है ना मनुष्य का, ये क्या करता है, पैदा होते रोता तो है, जब उसको भूख लगती है, बोलना तो लगभग 150 साल के बाद सीखता है, माता सिखाती है, वातावरण सिखाता है। ऐसे मनुष्य के बालक को हम कैसे कहेंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ है? अब बारी आई हाथी की। हाथी ने कहा, क्या कमजोर सा बालक पैदा होता है, अरे हमारा बालक है ना कैसा है, शक्तिशाली। तो हिरण की बारी आई, अरे चाल में देखो क्या दौड़ लगाते हैं। इस प्रकार सब पशु पक्षियों ने अपनी बात कही। अब उसमें से कौवा बोला, अरे भाई हम चर्चा तो कर रहे हैं, अच्छी चर्चा कर रहे हैं, सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, परंतु इसका निर्णय तो हम स्वयं कर रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं ना, अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें आए वो इस बात को कहे तभी तो मान्य होगी ना भाई। जिस प्रकार से हम मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मनुष्य भी तो कहेगा ना कि आपने तो अपने बीच में चर्चा की, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता दिया, इससे थोड़ा होने वाला है। तो संयोगवश उसी समय एक देवदूत वहां से गुजर रहे थे और सभी पशु पक्षियों ने देवदूत को बुलाया, अपनी समस्या बताई। देवदूत ने कहा कि देखो मैंने आपकी सारी बात सुन ली, परंतु धैर्य पूर्वक आप भी मेरी बात सुनो। आपने कहा कि कोयल जो है वो उसकी कूक अपने बच्चे को अगले दिन ही दे देती है, ठीक है आपकी बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु आप ये बताइए क्या कोयल दूसरों की बोली बोल सकती है क्या? कोयल बंदर की बोली बोल सकती है क्या? कोयल शेर की बोली बोल सकती है क्या? परंतु मनुष्य के बालक में, मनुष्य जो विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बालक में कैसा गुण आता है? वो तो अनेक प्रकार की बोलियां बोल सकता है। आप चलने की बात कर रहे हो, गाय माता ने कहा ना कि चलने की बात कही, ठीक है वो ऐसी स्थिति में रहा, परंतु जब वो विकसित हो गया, बड़ा हो गया, तो वो कहां चला? वो तो पानी में भी चला, वो हवा में भी चला, अर्थात मछली की तरह वो पानी में भी तैरा और पक्षी की तरह वो हवा में भी उड़ा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य की जो सीमाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई है? प्रकृति से असीमित हैं, प्रकृति के साथ उसका ऐसा संबंध है उसके बाहर जाकर वो काम करता है। अभी देखे ना चंद्रयान पे हम लोग गए, ये मनुष्य का ही तो था, उसका विवेक ही तो है। इन सब कारणों से मनुष्य कैसा हो गया? सर्वश्रेष्ठ हो गया, दुर्लभ जीवन मिला, साथ साथ सर्वश्रेष्ठता भी मिली। परंतु इस जीवन को चलाने के लिए क्या कहा, कुछ ना कुछ विकास भी तो होना चाहिए ना भाई, किसके सहारे चलेगा ये जीवन? तो बहुत सारी इच्छाएं और ऐशनाएं जिन्हें हम कह सकते हैं वो मनुष्य के साथ चलती हैं। यहां हम केवल तीन ऐशनाओं की चर्चा करेंगे। पहली ऐशना वित्तेषणा, अर्थात मनुष्य जीवन भर कमाता है, पहले पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद कमाना शुरू करता है और जब तक जीवन है तब तक कमाता है, उसकी संतुष्टि होती ही नहीं, सोचता है यहां से भी कमाऊं वहां से भी कमाऊं। एक छोटा सा विनोद का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, क्या कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में से गुजर रहा था और चार गुंडों ने उसको पकड़ लिया और उसे कहा कि भाई तुम्हारे पास जो कुछ है वो दे दो। अब उस व्यक्ति जो नौजवान था, हट्टा कट्टा था, उसने भी उनका चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि देखो भाई इतनी जल्दी देने वाला नहीं हूं, मेरे पास जो कुछ भी है मैं नहीं दूंगा, क्यों दूं तुम्हें, मैंने कमाया भाई, कमा कर लाया हूं, तुम भी कमाओ। तो उन्हें गुस्सा आया और इसके बाद उनकी दो सबकी हाथापाई हो गई। हाथापाई में क्या हुआ, उस नवयुवक ने दो गुंडों को घायल कर दिया और शेष दो जो थे उन्होंने उसको पीछे से पकड़ लिया और पीछे से पकड़कर दोनों हाथ पकड़े तो जो दो घायल थे उन्होंने उसकी जेब में से जो निकालना था निकाला। निकला क्या? 50 पैसे का सिक्का छोड़ दिया और जाओ तुम जाओ। क्या एक देव कितना समय लगाया और लगाने के बाद भी क्या मिले, केवल 50 पैसे। अरे हमें पता होता तो हम जाने देते तुम्हें। चलो, इसके बाद वो गुंडे अपनी राह चल पड़े और चर्चा करने लगे, क्या कि आज का दिन पता नहीं किसका मुंह देखा था, और एक व्यक्ति मिला उससे भी कितने पैसे मिले, 50 पैसे। सारा दिन खराब हो गया, दो लोग घायल भी हो गए। अब जो उनका सरदार था ना, उसने कहा, अरे भला करो भाई, अगर इस व्यक्ति के पास 1000 या 2000 होते तो ये कितना लड़ता, ये 50 पैसे के लिए कितनी हाथापाई की इसने हमारे से। अर्थात मनुष्य पैसे के लिए, वित्तेषणा के लिए पूरा जीवन क्या करता है, लड़ता रहता है। दूसरी जो एषणा कही गई वो थी पुत्रेषणा। हम जानते हैं कि सब अपने यहां पुत्र की इच्छा करते हैं, क्यों कि मनुष्य का जीवन जो है वो अकेले तो चल नहीं सकता, उसको तो परिवार बनाना पड़ेगा, आगे अपना संसार चलाना पड़ेगा, इसके लिए पुत्र चाहिए। महाराजा दशरथ का उदाहरण हमारे सामने है। जब महाराजा दशरथ के यहां कोई पुत्र नहीं थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि दरबार में आते और महाराजा का चेहरा देखते तो महाराजा का चेहरा लटका हुआ होता था, बड़ा उदास होता था। तो उन्होंने कहा, क्या महाराज, क्या हुआ, सब चीज तो आपके पास, सुख है, वैभव है, समृद्धि है, राज्य है, किस चीज की कमी है? अरे भाई, पुत्र नहीं है। तो पुत्र, ये पुत्रेषणा के कारण से भी ऐसी एषणा हम लोग कहते हैं। और तीसरी लोकेषणा की हम एषणा की जो चर्चा करेंगे वो है लोकेषणा। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि मेरा नाम हो, मैं कोई अस्पताल खोलूं तो मेरा उसमें बोर्ड लगाया जाए, मैं कोई धर्मशाला बनाऊं तो उसमें मेरा बोर्ड लगाया जाए, मेरी पहचान बने। आज MLAs, MPs ये सब किस लिए करते हैं, लोकेषणा के कारण से करते हैं ना। तो ये तीन एषणाओं के बारे में हमने चर्चा की। ये सारी एषणाओं के कारण से ही क्या है, स्ट्रेस है। और एक कारण और भी हो सकता है, वो क्या, हमारा परिवार कैसा है, हम अपने परिवार में किस प्रकार का स्ट्रेस रखते हैं, हमारा परिवार कैसा है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं आप सबको ध्यान हुई होगा कि जब हम पढ़ते थे तो हमारी किस आयु में हम लोग एडमिशन करते थे अपने बच्चों का, तो 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का एडमिशन होता था। आज क्या है, 2.5 वर्ष के बाद जो है बच्चों का एडमिशन होता है। और फिर क्या करते हैं, पुस्तकों का बोझ और उसके साथ साथ क्या, ट्यूशन का बोझ किसने लादा, हम ही ने तो लादा ना, ये स्ट्रेस बच्चे के लिए हमने तो पैदा की ना। तो मुझे लगता है कि परिवार में से जो स्ट्रेस खत्म करने का काम है ये केवल और केवल हम ही कर सकते हैं। आज हमने बहुत सुंदर घर तो बना लिए, हाँ उसमें अच्छा फर्नीचर, अपने अच्छे रहन सहन का इंतजाम तो कर लिया, क्या उसमें कहीं हमने ज्ञान की, कोई संस्कार की ऐसी बात भी रखी क्या? हम आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक बनने के कारण से क्या होगा कि हम सारे एक परिवार से जुड़े रहेंगे। जब घर में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, बाहर से आएगा, परिवार का कोई सदस्य आएगा, तो क्या होगा, वो सम्मान पूर्वक वहां रह पाएगा, उसको आने में अच्छा लगेगा, उसको स्नेह मिलेगा। ये कैसे होगा, ये आध्यात्मिक गुण के कारण से होगा। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने इसके माध्यम से रखना चाहूंगा। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ओम शांति।
धन्यवाद सुधीर भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये स्पष्ट किया कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, कि वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है, जिन आत्माओं ने परमात्मा पिता से अपना नाता जोड़ लिया और सदैव उसे याद कर उनके गुण और शक्तियों से जीवन को दिव्य बनाती है, वो उससे भी श्रेष्ठ है। और यही मेडिटेशन एक तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। अब मैं आह्वान करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी तारा बहन जी, आप हमें मेडिटेशन की अनुभूति कराएंगे। पिछले 50 वर्षों से आप इसी सेवा में संलग्न हैं। आप मुंबई से पनवेल में सीनियर राज्यों का टीचर हैं। अनेक प्रकार की या समाज सेवा के अंतर्गत आपने अनेक सर्टिफिकेट अवार्ड्स भी प्राप्त किया है। आज आप हमें राज्यों का मेडिटेशन की अनुभूति कराते हुए तनाव मुक्त जीवन का सुख प्राप्त कराएंगे आदरणीय तारा बहन जी।
ओम शांति। मंचा सिंह महानुभव, सब समाज सेवी भाई और बहने, आप कहेंगे सवेरे सेक्शन में, 10 बजे के सेक्शन में, 4:30 के सेक्शन में, फिर 6:30 के सेक्शन में, बार बार हमें ये योग का अभ्यास कराया जाता है या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। क्यों? हमारी जीवन ये सहज योगी जीवन है, कर्म योगी जीवन है, तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए योग एक सरल साधन है। योग या मेडिटेशन एक तनाव मुक्त की परम औषधि है, और हमारे जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आती है उनको पार करने के लिए योग एक हमारे जीवन के लिए ढाल बन जाती है। इसलिए इस राज्यों को अपने जीवन में अपनाना उतना ही जरूरी है। आपको अभी भी यही कहा गया कि अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, समाज का परिवर्तन करने के लिए हमें स्व के परिवर्तन की जरूरत है। तो वह परिवर्तन कब आ जाएगा? ये परिवर्तन की शक्ति हमें कहाँ से आएगी? जीवन के अंदर हम देखते हैं
बहुत बार ऐसा होता कि हम अपने संस्कारों को अवगुणों को बदलना चाहते लेकिन वह हमारे में शक्ति नहीं होती, तो वह सर्वशक्ति देने वाला एक ही सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। सर्वशक्तिवान परमात्मा से हम अपना बुद्धि योग लगाते हैं, जिसके लिए ही कहा जाता योग करते हैं, तो हमारे में अंतरिक शक्तियां बढ़ती है। वह परिवर्तन के लिए मनोबल की जरूरत होती है, आंतरिक शक्तियों की जरूरत होती है, अवगुणों को मिटाने के लिए श्रेष्ठ कर्मों का बल चाहिए होता है। तो ये सर्व जो भी प्राप्तियां हैं हमें राजयोगा मेडिटेशन से प्राप्त होती है। तो योग कोई कठिन क्रिया नहीं है, लेकिन योग उसी को कहा जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को कितना प्रेम से याद करता है, इसी प्रकार हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर, आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्यारे पिता को, जो सर्वशक्तिवान है, जो सुख और शांति का सागर है, उसकी प्रेम से याद करना माना ही ये राजयोग है। ईश्वरीय स्मृति में रहना यही राजयोग है। तुम 2 मिनट के लिए अपने पिता परमात्मा की याद में रहकर उस सर्वशक्तिवान से शक्तियों को प्राप्त करें, अपना स्व परिवर्तन करके हम समाज का भी परिवर्तन कर सके। सभी स्वस्थ होकर बैठेंगे। मन के बाहरी विचारों को हम हॉल के बाहर ही छोड़ दें। स्वस्वरूप में स्थित रहे। जीवन जीने वाली मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूं। शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। मैं अनादि अविनाशी एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। मुझे आत्मा के पिता परम आत्मा जो विश्व कल्याणकारी है, सर्वरक्षक है, सभी आत्माओं के पिता है, एक महाज्योति है। मैं आत्मा अंतर चक्षु से। प्यारे पिता के सन्मुख अनुभव कर रही हूं, उस प्यारे पिता का साथ का अनुभव कर रही हूं। शांति के सागर पिता से शीतल शांति की लहरें मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रही है। शांति की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। शांति की शक्ति से मन का तनाव समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा पिता के साथ के कारण शक्ति का खुशी का अनुभव कर रही हूं। प्राप्त हुई शांति की शक्ति खुशी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा के द्वारा सारे विश्व में फैल रही है। समाज की हर आत्मा इन शक्तियों को प्राप्त कर अपने जीवन को शांतमय स्वस्थ और खुश नमा अनुभव कर रही है। समाज की हर आत्मा अपने पिता के साथ का अनुभव करे। और अपने जीवन को दिव्य गुणों से सुशोभित कर समाज का एक नया निर्माण करें। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद तारा बहन जी, आपने सभी को राज्यों का मेडिटेशन के द्वारा शांति की अनुभूति कराई, तनाव मुक्त जीवन का सुख प्राप्त कराया। अब अंत में आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय विजया बहन जी से अनुरोध है, आप अपने आशीर्वचन हम सबके मध्य रखेंगे। आप पिछले 56 वर्षों से यह ईश्वरीय जीवन समर्पित जीवन जीते हुए अपनी सेवाएं दे रही हैं। दिल्ली स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आप अपनी सेवाएं देते हुए अनेकों की जीवन तनाव मुक्त बना रही हैं और इस सोशल विंग के शुरू से आप अपनी सेवाएं आज तक अविरत दे रहे हैं। आदरणीय विजया बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति। हम सबका लक्ष्य है अपने समाज को श्रेष्ठ बनाना, परंतु समाज श्रेष्ठ तब बन सकता है जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि हमारे अंदर दिव्य गुण हो, सच्चाई सफाई हो, अंतर्मुखता हो, दया रहम की भावना हो। एक समय था जब हमारा समाज दैवी समाज कहलाता था, जिसके अंदर सब दिव्य गुणों से संपन्न थे, सबका एक दूसरे से प्यार था, कोई दुखी व अशांत नहीं था। तो ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए, ये समाज हमारा है, हमने अपने समाज को श्रेष्ठ ऊंचा ले जाना है, जैसे कि वो पहले था, दैवी समाज था, हमको फिर से उसको ऐसा बनाना है। तो उसको ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर हर आत्मा के प्रति रहम भाव हो, दया दृष्टि हो, अपनत्व की भावना हो, ये महसूस हो कि ये सब मेरे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई अन्य बात है या किसी भी प्रकार के तनाव में ग्रस्त है, तो हम अपनी शुभ भावना से, श्रेष्ठ कामना से और अपने दिव्य गुणों के द्वारा मीठा बोल से उस व्यक्ति को तनाव से बाहर ला सकते हैं। उनको हम ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिससे कि वो सदा के लिए खुद भी तनाव से मुक्त हो जाए और दूसरों को भी कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, क्या मेरे को किसी भी प्रकार का तनाव है, क्या मेरे घर में किसी को कोई प्रकार का तनाव है या अड़ोस पड़ोस में है। तो पहले तो अपने आप को इससे मुक्त करना है। तो तनाव भी जीव होता है, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य को वैध विरोध के द्वारा या किसी प्राप्ति के द्वारा जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तब उसे तनाव होता है। जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक वो चिंता मुक्त, इच्छा मुक्त हो नहीं सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी भी इच्छा नहीं करो, कभी भी चाहना नहीं करो कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। परंतु हम देखते हैं आज दुनिया में यही कुछ है, सब यही कर रहे हैं कि ये मिले, मेरा मान हो, शान हो, मेरा भाषण अच्छा हो जाए, मेरे स्टेज पर मेरे को मान दिया जाए, सब कहें इसने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया है, इसने तो बहुत अच्छा किया है। ये जो चाहना है, भगवान कहते हैं कि ये चाहना चूड़ा बना देती है। चूड़ा मीन्स जिसके अंदर बहुत कमियां हो, अनेक प्रकार के अवगुण हो, अनेकों के दुख देने वाले बोल हो, अनेकों से छीनना, छीना झपटी करना जिसका ये कार्य हो, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है, ना दुनिया से, ना घर वालों से, ना परिवार वालों से और ना ही समाज से, कभी भी मान प्राप्त कर नहीं सकता है। और समाज को तो वो ठीक कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो खुद ही ऐसा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले खुद बनो फिर दूसरों को बनाओ, जिसके लिए एक स्लोगन हमें दिया गया है, स्व परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन। जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, जब मैं इनसे मुक्त हो जाऊंगी तो नेचुरल है मैं सबसे सबको मुक्त कर सकती हूं और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है। ऑटोमेटिकली वो मेरे जीवन से प्रभावित होंगे, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति इतनी शुद्ध हो कि मैं हर व्यक्ति को एक आत्मा रूप में अपना देखूं। ये मेरा है, पराया नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं, सब एक परमात्मा की संतान है। तो जब तक मेरी आत्मिक दृष्टि नहीं होती है, हर एक को आत्मा की दृष्टि से नहीं देखती हूं, तब तक मैं उन आत्माओं का सुधार नहीं कर सकती। कई बार हम सोचते हैं ये तो बहुत खराब है, हम इनको कैसे सुधारेंगे, ये तो कभी सुधर नहीं सकती, कभी ठीक हो ही नहीं सकते हैं, इतनी इसमें चीजें हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतने अवगुण हैं। परंतु वो व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या, मैं कैसा हूं। इसलिए पहले अंतर्मुखी बंद करके अपने अंदर झांक करके देखिए कि मेरे में क्या है, जब इस चीज का आपको अपनी कमजोरियों का अपने अवगुणों का पता लगेगा तब आप दूसरों के अवगुणों को देखना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के अवगुणों को देखना माना खुद अवगुणी बनना। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है आपके अंदर शुद्ध दृष्टि हो, सच्चाई हो, सफाई हो, स्वच्छता हो, तो हम अपने आप को चेक करें क्या ये सब चीजें मेरे अंदर है, क्या मैं इन सब बातों का पालन करता हूं। हर एक चाहता है मेरे अंदर से बुराइयां छूट जाए, क्रोध छूट जाए, लोभ छूट जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा मेरे अंदर ये चीज नहीं, सबके अंदर है। ये ठीक है किसी में कम है किसी में ज्यादा है, मगर है सबके अंदर। हम चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, परंतु छूटती नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो हम छोड़ते हैं। परंतु वो शक्ति जब तक हमारे पास नहीं होगी तो हम अपनी इनर पावर से दूसरों को पावर नहीं दे सकते। तो वो शक्ति है मिलेगी उस परमपिता परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है। हम सोचे वेद शास्त्रों से मिल जाए, गीता से मिल जाए, महात्माओं से मिल जाए, साधु संतों से मिल जाए। कोई भी इंसान किसी भी मनुष्य को इनर पावर स्पिरिचुअल पावर दे नहीं सकता है सिवाय एक परमपिता परमात्मा के जो कि निराकार है, सबसे ऊंच है, जिसका अपना शरीर नहीं है। वो मनुष्य आत्माओं की पालना के लिए ज्ञान देने के लिए इस साकार सृष्टि पर आते हैं और एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो हम अपने जीवन में हमने देखा ब्रह्मा बाबा को जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर है, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन को कैसे इतना अच्छा बनाया कि कभी भी किसी को कभी उस दृष्टि से नहीं देखा। चाहे कैसा भी कोई था उसको अपना समझते थे। कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों हो रहा है। वो जानता है जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार, इसमें ड्रामा में नूंद है, ये एक बना बनाया ड्रामा है, ये चीजें आनी ही है और आएगी। इस निश्चय पर, इस सेहत पर वो सदा अड़े रहे और उसके कारण ही उनके निश्चय को देखकर, उसके खेत को देखकर आज हम देखते हैं इतने भाई बहनों की जीवन इतनी ऊंची बन गई है और आज इतने सेंटर्स खुल गए हैं जहां अनेक आत्माएं लाभ ले रही हैं और अनेक समाज सुधारक भी लाभ लेकर के अपने समाज को इतना ऊंचा बना रहे हैं। तो हम सब यह ध्यान में रखें कि हमने अपने समाज में आध्यात्मिकता लानी है, सिंप्लिसिटी में आध्यात्मिकता हो, हर एक का जीवन अच्छा हो, हर एक का चरित्र ऊंचा हो, कोई किसी के साथ वैर भाव ना हो। जब हम ऐसा लाएंगे तो जरूर हमारा एक अच्छा समाज बनेगा जो कि कभी स्वर्ग के समय जब दैवी दुनिया थी वैसा ही समाज आज सबको बनाना है। इसलिए बार बार कोई भी स्पीकर है सब आपको यही कह रहे हैं कि दिव्य गुणों को धारण करो, गुणों को धारण करो, गुणों को धारण करो। किस लिए? क्योंकि तुम बच्चे ही देवता बनोगे, देवता बनने कोई और नहीं आएगा। आप सब देवता बनने वाले हो, ये आप निश्चय रख के चलो कि हम ही उस दैवी दुनिया के हम ही भाती हैं। उसके लिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना, जिसको कहा गया है अंतर्मुखी सदा सुखी, कि सदा अंतर्मुखी रहे अर्थात अपने अंदर को झांके और मुख से कभी कोई ऐसा शब्द ना बोले जिसको कि अन्य आत्मा को दुखी हो, वो दुखी हो और हमको वो बद दुआएं दे, मगर अपने शुद्ध बोल के द्वारा, अच्छे बोल के द्वारा, मीठे बोल के द्वारा सबको सुख देना है। और जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम धीरे बोलेंगे, उतना हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे जिसके द्वारा कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा, कभी किसी को भी दुख नहीं होगा। तो हम खुद को ही नहीं केवल, पूरे अपने समाज को ऐसा बनाएंगे। तो हमारे जो भी समाज सेवक भाई बहने बहुत दूर दूर से आए हैं, तो अवश्य ही वो इस लक्ष्य को यहाँ लेकर के, यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि यही हमारी मंजिल है। इसलिए कहते हैं मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ उस पर चलने की जरूरत है, उसको धारण करने की जरूरत है। ऐसा करने से ही हम खुद भी सुखी रहेंगे और समाज को भी सुखी भी कर सकती है और बदल भी कर सकती है। ओम शांति।
धन्यवाद आदरणीय विजया बहन जी, आपने एक सुंदर विजुअलाइजेशन हम सबके आगे रखा और सुंदर सा स्लोगन दिया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। हमें ही फिर से मूल्यनिष्ठ स्वर्णिम समाज की स्थापना करनी है और उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना है। स्वयं निराकार परमात्मा शिव पिता की याद से, दिव्य गुणों की धारणा से फिर से जल्दी ही हम सब मिलकर के ऐसा समाज ला करके ही रहेंगे। आज के सत्र में भाग लेने वाले सर्व महानुभाव जिन्होंने अपना अमूल्य समय भी दिया, विचार भी दिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इतना दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आदरणीय विजया बहन जी से अनुरोध है कि आप हमारे गेस्ट श्री सुधीर भाई जी को ईश्वरीय भेंट सौगात अर्पित करेंगे। कहते हैं खुद और खुदा पर हो विश्वास, खुद और खुदा पर हो विश्वास और सकारात्मक कर्म की हो आस्था, फिर मंजिल दूर नहीं सहज है रास्ता, बस चलते चलो प्रभु का हाथ और साथ हमारे जीवन को बेहतर बना करके ही रहेगा। ओम शांति। आज का यह सत्र यहाँ संपन्न हो रहा है।
Thank you.